अन्यथा भगवत भक्ति नहीं होगी। ये उस सेंस में नहीं किया गया है, कहा गया है, ये कहा गया है केवल भक्ति का हम अनुशीलन करें, इसलिए मुक्ति होने से संसारिक ताप नहीं रहेंगे, संसार की ये बातें सब नहीं सुनेंगे, हमारे रूप सनातन इत्यादि एकांत निर्जन में भट करके भजन किया, किस लिए? कोई भी संसारिक बातें कान में नहीं आए, उसकी चिंता हम लोगों में नहीं आए, इसलिए तो हम लोग भी ऐसा परिवेश में रहेंगे जिसमें ये सब चीज़ें न रहें। रोग भी दूर आना चाहिए, नहीं तो दिन रात रोग से आक्रांत होकर के हाय हाय कर रहे हैं, भजन कर सकेंगे? इसीलिए कह रहे हैं अग्रह मुक्ति, इन सब चीज़ों से मुक्ति, छुटकारा, ये कब होगा? भक्ति के लिए शक्नी है ना, अपने प्रादुर्भाव के प्रारंभ में ही ये सब चीज़ें करा दी। अभी यदि नहीं हो रहा है तो समझो जो कुछ इसमें कारण है, हमारे अंदर में कमी। जैसे हम लोग हरिनाम करते समय में चित्त में द्रव नहीं होता, आंखों से आंसू की धारा नहीं गिरती, पुलक रोमांच नहीं है, तो क्या समझना चाहिए? हमारे जन्म जन्मों का अपराध है, इसलिए ऐसे सुंदर मधुर कृष्ण नाम में भी ऐसा नहीं, इसीलिए ये कारण। और भक्ति, भक्ति तो ही है, तो ये तीनों का यही साध्य फल है। क्या साध्य फल है? गोपियों के प्रेम में, उसके भावों में लोभ होना, उन कथाओं में रस का होना, आनंद का होना, उसी में मन लगना, और किसी चीज में नहीं, एक भाव आ जाए उसमें, ये सब साधनों का फल है। संसार से विरक्ति का भी, मुक्ति का भी, और भक्ति का यही साध्य फल है। क्या? गोविंदे गोविंद एव अखिलात्मनिरूह भाव, इसकी आवश्यकता, यही साध्य फल है, इससे बढ़कर के और कोई फल नहीं है। जिसको वयम, वयम माने हम लोग, कौन?
नारद,
बहुवचन है यहाँ, उद्धव जी तो अकेले है ना, यहाँ पर वयम किस लिए करें? नारद जी और जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, नारद जी के समकक्ष, इन सब लोगों के लिए भी यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए जिन लोगों को संसार से विरक्ति भी हो गई है, ऐसे ब्राह्मण कुल, और जिन ब्राह्मण मुनियों को मुक्ति भी मिल गई है, और जिन लोगों को भक्ति भी हो गई है किंतु इसके प्रति रुचि नहीं हुई, तब क्या हुआ? सब बेकार का है, सब बेकार। ऐसा ब्राह्मण जन जिनको ये तीनों भी मिल गया और वो गोपियों के प्रति अनुराग नहीं हुआ, उनकी कथाओं में रस नहीं है, आनंद नहीं है, उसके लिए कोई उत्कंठा नहीं जन्मी हृदय में, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, कब मिलेगी? तो हमारा बहुत दुर्भाग्य है, हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा कह करके जो इसे वंचित रह जाते हैं, यथार्थ में वो सचमुच में वो दुर्भाग्य है, सचमुच में दुर्भाग्य, इसमें कहने में दो कोई राय नहीं, जरूर दुर्भाग्य। यहाँ पर भगवान अनंत, अनंत कौन है? नमोनंत लीलाय
देवाय,
यहाँ पर ये था, अनंत लीला कौन है? अनंत लीला, लीला कौन है? राधा जी के साथ में विलास बिहारी जो हैं, वो है, उनके लीला को अनंत रस, इसलिए यहाँ पर अनंत, वो अनंत को यहाँ पर ले आओ, इसलिए अनंत की कथा रति, उनकी जो कथा रति है श्रीमती जी के साथ में, उनकी शक्ति के साथ में, नारदनी के शक्ति के साथ में, वही सर्व फल स्वरूप है, वही अंतिम चूड़ांत अंतिम फल है, इससे बढ़कर के और कोई फल नहीं है। इसलिए गोविंद एव अखिलात्मनि, जिसके लिए हम वयम उन लोगों को तो, मुक्तों को और भक्तों को, मुमुक्षुओं को तो छोड़ दो, हम लोग जैसे सिद्ध भक्त लोग भी, हम लोग भी वांछा करते हैं। विशेषतः फल के अभाव में संसार विरक्त या संसार से मुक्त भगवत भक्त पदवाच्य हुआ जाए ना, नहीं हुआ जा सकता, कोई हो ही नहीं सकता। यथार्थ में वैराग्य, वैरागी कौन है? विशेष रूप में कृष्ण के प्रति अनुराग जिनका है, उसके प्रति जिनका भाव है, अथवा कृष्ण के प्रति वैसे ही गोपियों के साथ में अनुराग, नहीं तो अनुराग जी। और मुक्त कौन है? वेद के समस्त वेद अंकुशों से मुक्त होकर के, सारी की ये सबसे मुक्त होकर के, अत्यंत दुख निवृत्ति से होकर के, यहाँ तक कि शांत दास सख्य बात्सल्य इत्यादि भावों से भी मुक्त हो चुका है, और एकमात्र गोपियों के भाव में, गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो सेवा है उसमें अनुरक्ति या उसमें रस है या लोभ है, उसके प्रति अभी आदर का भाव आया है एकमात्र, ऐसा ही यही एकमात्र फल है। यदि नहीं है, वो ब्राह्मण जन्म है या ब्रह्मा का जन्म भी है, तो उसे कोई भी प्रयोजन नहीं। कह रहे हैं कि यदि ये कहो ये परमात्म शिरोमणि, क्या लिखा है
परमाप्त,
आप तो ना
मोक्त,
परमाप्त शिरोमणि हैया छे गोपीगण की जन्न वेद विधि धर्माचरण इत्यादि परित्याग करें। कैसा लिखा है जी? ठीक सर, ये ठीक है, ऐसा लिखा है।
परमाप्त शिरोमणि है, परमाप्त शिरोमणि भैया गोपीगण की जन्म वेद विधि धर्माचरण परित्याग करें।
हाँ, ये यदि कहो, अच्छा ठीक है, गोपियाँ सबके शिरोमणि हैं, आप तो लोगों में भी शिरोमणि हैं, आप तो कामों में भी ये शिरोमणि हैं गोपियाँ, तो उन्होंने वेद भी धर्म का आचरण का परित्याग क्यों कर दिया? इससे क्या हुआ? वो करती रहती और वेदों का आचरण भी करती रहती, कजे नहीं होगा ऐसे, ऐसा हो सकता है? वेदों के वेद विहित कार्यों का परित्याग न करके कृष्ण के प्रति वो जो पार्थिव भाव है, जार भाव, ये कभी हो सकता है? इसलिए इसको प्रत्याग कर दिया एकदम। जो कैसे प्रत्याग कर दिया? मलवत प्रत्याग कर दिया, उसे कोई भी ऊंची नहीं। जो कृष्ण के प्रेम में जो चीज बाधा आती है, वो जितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसका प्रत्याग। देखो इसका रहस्य सुनो, जो क्यों वेद का प्रत्याग कर दिया, वेद के नियमों का प्रत्याग कर दिया, किस लिए, ये सुनो। वस्तुतः तादृश रूढ़ भावी वेदे चरम को परम तात्पर्य, वेदों का परम तात्पर्य क्या है? वही गोपियों का जो गोविंद एव अखिल आत्मनिरूढ़ भाव, यही वेदों का चरम और अंतिम तात्पर्य है। किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप में इसको इस रूप में नहीं लिखा, नहीं बताया, क्योंकि निगूढ़ भाव है ना, छिपा हुआ। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किस लिए नहीं किया गया शास्त्रों में? किस लिए नहीं कहा? ये भगवान है, सब अवतारों के संबंध में कहा गया, तो यदि बतला ही दिया जाता तो छन्न अवतार किस लिए कहेंगे? छन्न अवतार इसीलिए तो वेद में छन्न है, वेद में कहा गया है, किंतु इस तरीके से कहा गया है जो समझने वाला ही समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा, उसका अर्थ दूसरा ले लेंगे। जैसे महाप्रभु की वंदना, महाप्रभु वंदे महापुरुष ते
चरणांग बिंद,
जितने टीकाकार हैं उन लोगों ने राम को इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य लिया। आज जो जानने वाले हैं महाप्रभु के जो परिकर, उन्होंने इसका अर्थ किया, महाप्रभु किया, इसलिए है। और जब ये लोग सुनेंगे उसका अर्थ और ठीक ठीक समझेंगे तो कहेंगे नहीं यही अर्थ ठीक है, वो पहले वाला अर्थ लो। कलयुग के लिए उपास्य, कलयुग में अवतार ले वाले कीर्तन के साथ में जिन्होंने अपनी भाग्या को प्रत्याग कर दिया, माया मृग अन्न धावत, माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं ना, तो ये किसका अर्थ होगा? कलयुग में संकीर्तन के साथ में गौर अंग में ब्राह्मण के रूप में कौन आया? राम आए, तो इसका कैसे होगा? वो तो कह रहे हैं कि कलयुग में जो उपास्य हैं उनका यह मैं बतला रहा हूँ जो कलयुग के कौन उपास्य हैं। इसलिए ये कलयुग में तो आए नहीं राम, इनके उपास्य की बात कोई नहीं, ये तो त्रेता युग में है, उस समय के उपास्य हैं, उनके लिए अलग मंत्र है, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जी के लिए होगा। और महाप्रभु जी के लिए ही होगा जो विष्णु प्रिया देवी को छोड़ गए, माया मृग जो माया के मृग में फंस करके उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण के लिए, उनके लिए बहुत ही दुखी होकर के उनके पीछे पीछे द्वार द्वार बन जा करके कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो, ये माया मृग शब्द का तात्पर्य।
और रामचंद्र लक्ष्मी को साथ ले गए थे जंगल में, छोड़ के नहीं गए?
हाँ, उनको तो छोड़ करके गए नहीं, तो ये कैसे अर्थ आएगा? इसलिए ये सब का विचार वेदों में है सब कुछ, किंतु प्रछन्न रूप से है, तो छन्न कलि के लिए जो छन्न अवतार हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में कैसे वर्णन करें? ये सब वेद की निगूढ़ लीलाएं हैं, इसलिए समलात क्या सबलात सामम प्रपद्ये, श्यामात सबलम प्रपद्ये, ये निगूढ़ रूप में गोप मणि च इत्यादि सब बतलाया। जत्र भूरी सिंगो गाव, भूरी सिंगो गाव माने क्या? लंबी लंबी सिंह वाली, बड़ी बड़ी थन वाली, जहाँ पर लाखों गायें हैं उस ब्रज में, गोप के घर में जो जन्मे हुए हैं और जो लीला कर रहे हैं, वेद में ऐसी सब बातें हैं। इसका अर्थ उलट उलट करके दूसरे लोग ले लेते हैं, कृष्ण लीला को नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये सब उसमें भी ये सब निगूढ़ भावनाएं हैं। अब विशेष करके उसका अब गोपियों की बात जो कृष्ण को भी प्रकाशित करने वाली हैं, उनके भावों को भी प्रकाशित करने वाली हैं, वो सब गोपियाँ जो अपने हृदय में गोपन रूप से कृष्ण को भी रखी हुई हैं, वो सब गोपियाँ, या उस दिन तीन अर्थ कहा ना, उनकी लागनी शक्ति स्वरूपा हैं, कृष्ण को विस्तार करने वाली, कृष्ण जो प्रचार आचार इत्यादि करते हैं उसमें जो सहायिका है, कृष्ण जिनका ये सब आस्वादन करते हैं उनको कहा गया गोपी। अब कहते हैं कि गोपियों को के वो भाव जो हैं, ब्रह्ममय वेद तहां दिल कंठ है हृदय स्वतः प्रादुर्भूत, ये गोपियां कैसी हैं? वो वेद का जो तात्पर्य है क्या रूढ़ भाव और चरम और अंतिम परम तात्पर्य है, उसको गोपियां क्या करती हैं? उनके कंठ से ध्वनि के रूप में वो निकलती है। क्या क्या गोपियों के ध्वनि से निकल?
वेद वेद
कैसे? गोपियों का जो प्रेम है, प्रेम पूर्वक जो बातें हैं, जो कृष्ण के लिए भ्रमर गीता इत्यादि में कहा है, गोपी गीत में कहा है, जुगल गीत में कहा है, तथा
भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत,
गोपी गीत में जो कहा है, तो कथामृतम इत्यादि में, ये जो कथा बातें हैं ये सब वेद का मूल तात्पर्य और चरम जो बातें हैं ये सब गोपियों के कंठ में ही है और उनके हृदय से स्वतः प्रादुर्भूत होता है ये सब चीज़ें। जो वेद जो अच्छी तरह से नहीं प्रकट कर सकते हैं उन चीज़ों को ये गोपियाँ स्वतः अपने मुखारविंद से अपने हृदय से प्रकट करती हैं। अतएव ब्राह्मण जन्म लाभ करके ब्रह्मा उग्र, ब्रह्मा क्या करते हैं, चार मुख से वेद पाठ करते हैं, एक एक मुख से एक एक वेद, इसलिए वो ब्रह्मा है, वेद इत्यादि को प्रकाशित कर रहे हैं। तो वेद ये ज्ञान कृष्ण के द्वारा पाया है और उनको चार मुख से वर्णन कर रहे हैं और उसी के अनुसार में अपना आचरण भी रखते हैं। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उसी के अनुसार अपने आचरण को बनाने की चेष्टा करते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण हैं। अब कहते हैं कि वेद इत्यादि जिनको, यही सब गोपियों को कंठ से वेद का चरम भाव प्रकाशित हो रहा है, उनके हृदय में वो चरम भाव है, उनको वेद अध्ययन इत्यादि की क्या जरूरत है, आप्लुत और हर्षद दीर्घ स्वर से उनको ये सब करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत। ओम सहस्र शिषा पुरुषो, यही तो वेद के प्रधान सब चीजें हैं, ये पढ़ करके क्या करेंगे, ये किनकी स्तव है, इंद्रम भजामहे, मतलब तो गोपिया इंद्रम भजामहे कहेगी। ओ तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यंत देव जीव चक्षुरागतम इत्यादि ये सब बातें। अथवा ब्रह्म कहने से, वहां पर ब्रह्म जो जन्म है ना, वहां पर ब्रह्मा भी नहीं अर्थ कर रहे, ब्रह्म जन्म, ब्रह्म बोलते से आत्म तत्व, जिनके निकट वह स्वतः ही अभिव्यक्त आत्मज्ञान, आत्मज्ञान माने क्या, कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा ये गोपियां हैं, यही उनका आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम भरी उनका विलास इत्यादि है, सेवा है, यही चरम इसलिए गोपियों को ज्ञान अभ्यास की क्या जरूरत है, जबकि वेद का चरम प्रतिपाद्य विषय उनके हृदय में है और उनके मुख के द्वारा प्रकाशित हो रहा है और वह ब्रह्म परब्रह्म साक्षात उनकी सेवा में जुटा हुआ है, उनको अब ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है, कोई भी जरूरत, वो ब्रह्म की बात कहते हो, वो ब्रह्म स्वयं मूर्तिमान होकर के परब्रह्म जो है वो उनकी सेवा में जुटे हुए। परब्रह्म से पूछे जी भाई आपका यहाँ पर लाल क्यों लग गया, सकुचाएंगे नहीं बतला सकेंगे। ब्रह्म जन्म भी या बहुवचन या गौरव में ये बतलाया गया है। अतः इस प्रकार असंख्य ब्रह्म जन्म में भी यदि भगवान की कथाओं में रस नहीं मिला, कौन ये सब रस यदि नहीं मिला तो वो सब जन्म बेकार का है। यदि भगवत भक्ति नहीं हुई वो सब जीवन बेकार का गया। अथवा भगवान अनंत की कथाओं में जिनको रस अनुराग नहीं हुआ है, जिनको हुआ गया है, जिनको रस नहीं उनका तो जन्म बेकार, और जिनका रस हो गया है उनके लिए अब ये सब की जरूरत क्या है, ब्रह्म जन्म की, वो किस चीज के जन्म की प्रतीक्षा करेंगे, वो भी जन्म ब्रज में तीन होना पसंद कर लेंगे किंतु ब्रह्म जन्म इत्यादि नहीं। ये कैसे अर्थ हुआ, आकार का विश्लेषण नहीं करने से, जहां तक वेद इत्यादि अध्ययन का क्या प्रयोजन, यदि प्रेम ही हो गया गोपियों का, किसी को समस्त शास्त्रों से हट करके उनको भगवत भक्ति का यदि आभास भी भाव भी हो गया तो क्या जरूरत है वेद इत्यादि पढ़ने की, कोई भी जरूरत। एक आदमी कह रहे हैं जिसे जिनको भगवान के नाम में रुचि हो गई है, जो नाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, जिनको कुछ भगवत भक्ति हो गई, उस शूद्र भी यदि हो, चंडाल भी हो, तो सद्य सबनाय कल्पते, सद्य सद्य ही समन के युग हो जाए। अब इसमें विभिन्न टीकाकारों ने बहुत से अर्थ किए। कोई कहते हैं सबन के योग्य ब्राह्मणों की तरह हो जाता है, किंतु सचमुच में नहीं होता, ईव है,
जन्मांतर की अपेक्षा,
जन्मांतर की अपेक्षा है, फिर ब्राह्मण होकर के तप करेगा। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं नहीं, जन्मांतर की कोई अपेक्षा नहीं, किंतु ऐसा गर्हित कर्म क्यों करेंगे, उनकी रुचि नहीं होती। ये सब यज्ञ करना क्या चीज है, इसमें भक्ति का कोई गंध नहीं, ऐसा वो यज्ञ करके क्या करेंगे, इसलिए उनको ऐसे कर्मों में, क्षुद्र कर्मों में रुचि नहीं होती, और वो लोग उनको ही सबसे श्रेष्ठ काम समझ करके वो यज्ञ करते हैं। तो बताओ इनसे अधिक इनका अधिकार हुआ तो क्या जरूरत है, जन्म लेने की ही, जन्म लेकर के तब करेंगे, इसकी क्या जरूरत है। इसी जन्म में हमसे घृणा हो जाती है, हम ही लोग यज्ञ नहीं करते हैं, अभी तो भक्ति नहीं हुई तभी। जेहेतु वेद अध्ययन और उसमें जो उक्त जो कर्मकांड है उसका आचरणकारी साधन समूह और ये फल जितने हैं वो भगवान के भगवत भक्ति के अंतराय हैं। अंतराय मैंने क्या, उन भावों के विरोधी, इसलिए इसमें जरूरत नहीं है। इसलिए यदि दीप है, दीप को लेकर के हम खोज रहे हैं किसी घर में एक आम का फल खोजने के, अंधकार है, हाथ में दीप लिया, देखा जी कहाँ रखा गया, मैया ने कहा जी बेटी घर में आम रखा है ले आओ, मैया कहाँ रखा है, अरे जाओ देखो वहीं पर रखा है, तो उसने देखा तो नहीं, अरे दीप ले लो, तो उसने हाथ में प्रदीप लिया और जा करके देखा तो एक जगह पर आम रखा था, उसमें से आम ले लिया, और जब आम उसको मिल गया ले करके बाहर में आई तो दीप को भी लेते रहेगी चौबीसों घंटा ना, और दीप को रख देगी,
छोड़ देगी, कोई छोड़ देगी,
क्या जरूरत है दीप, जो जिसके लिए वो खोज रही थी वो तो चीज मिल गया, अब उस दीप की कोई जरूरत नहीं। यदि फल मिल गया, गोपी भाव मिल गया, तो ये ब्रह्म जन्म और ब्रह्मा का जन्म इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, ये बतला रहा। और यदि ये भाव ही नहीं मिला तो उन साधनों से क्या वो भाव मिल जाएगा, कदापि नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, वैसे भक्तों के संग से मिल सकता है। इसलिए इन साधनों को प्रत्याग करने की ही विधि है, इस भाव के कोई जरूरत नहीं, इनसे कोई भक्ति नहीं। इसलिए जो लोग वेद इत्यादि पाठ करते हैं, त्रैकालिक पाठ करते हैं बड़े हर्ष व दीर्घ से और वृंदावन में रहते हैं, उनके लिए हंसी आती है, जीवन को बेकार नष्ट कर, ओम सहस्त्र सरसा पुरुष और सब श्री सूक्त पुरुष सूक्त और सब वेद का उच्चारण करते हैं, जिसमें गोपी का गंध क्या ब्रज लीला से कोई संबंध नहीं, यहाँ तक कि वैकुंठ से भी संबंध नहीं, जागते कि ये सब समझ। इसके अतिरिक्त भी देखा जाता है फल सिद्धि के पीछे साधन अनुष्ठान, ये सब जो साधन अनुष्ठान है भक्ति के लिए मत समझो, श्रद्धा इत्यादि के लिए मत समझो। यदि किसी को अनुराग इत्यादि भाव तक भी हो गया किंतु श्रद्धा नहीं हटेगी, श्रद्धा अपने स्थान पर है, किंतु मुक्ति हो जाने के बाद में हम ब्रह्मास्मि इत्यादि ये सब भाव नहीं, साधन नहीं रहता। योग तपस्या व्रत कर्मकांड इत्यादि में ये सब साधन नहीं रह जाता, सिद्धि में वो सब हट जाते, किंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु मुनि जो सिद्ध हो और भक्त लोग जो साधन कर रहे हैं या सिद्धि प्राप्त, इन लोगों के लिए जो साधन है गोपियों को जिनको अनुराग है, अनुरागमयी गोपियों के लिए क्या जरूरत है इसकी? है जरूरत? कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं छिप गया था, जैसे अलब्ध धनम, जो कि किसी को कोई धन नहीं था उसको मिला और वो किसी तरह से गुम उसका धन हो गया, तो जैसे दिन रात उसकी चिंता करता है, इसलिए ऐसे ही चिंता को बढ़ाने के लिए मैं छिप गया। यह बात ठीक है कि गलत है? गोपियों का कोई प्रेम बढ़ाना है या कृष्ण के प्रेम को ही बढ़ाने वाली जो गोपियां हैं उनका प्रेम को कृष्ण क्या बढ़ाएंगे? प्रेम नौ नौ आयमान रूप में वही उनके प्रेम को बढ़ाने वाली है। इसलिए कृष्ण कहे ये जो मैंने कहा ये ठीक नहीं, न पा रहे हम निर्वर दर्शन, इसलिए उन्होंने कहा। ऐसी गोपियों के लिए ये सब साधनों की जरूरत क्या? अब इसी को खोल करके अगले श्लोक में ये बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? जो जो भाव इन गोपियों को है वो भाव हम में नहीं है, मुनियों में नहीं है और किसी में नहीं है। आज तक इच्छा करके भी कामना करके हम लोग उसको नहीं पा सके, और जिनमें यह स्वाभाविक रूप से है और अत्यंत उन्नत रूप में अंतिम हद तक जिनमें है, कहाँ वो गोपियाँ और कहाँ मैं व्यभिचार दुष्ट द्वारा दुष्ट अपने लिए करें। अब इसका हम लोग अगले दिन इसकी बहुत सुंदर व्याख्या ये बतलाएंगे सनातन गोस्वामी, जो आज तक किसी आचार्य ने नहीं बतलाया। नए नए सब सुन करके और नए नए भाव इसमें उठते हैं। कैसा सुंदर सनातन गोस्वामी जी का विचार है। यदि वो सब नहीं लिखते आज जगत अंधा हो रहता और इन सब भावों की उपलब्धि से वंचित रहता।
दैपायनो
संग की महिमा बतला रहे हैं, बतलाते बतलाते उन्होंने पूर्व श्लोक में ये बताया एता परम अनुभूतो ध्रुव को श्लोक में ये गोपियों का जिस गोविंद के प्रति जो आत्माओं के निखिल आत्माओं के आत्मा हैं उनके प्रति रूढ़ भाव करने के लिए प्रार्थनी जो गोविंद है उनके प्रति रूढ़ भाव, जिस रूढ़ भाव के लिए हम लोग मुमुक्षु लोग मुनि लोग मुक्त मुनि लोग और हम लोग भी इच्छा करते हैं कि वो होती नहीं है। किसी को ये बतला रहे हैं कि हमारे लिए भी संभव पर हो सकता है। गोपियों का जैसा श्रेष्ठ संग है तो उसका प्रभाव भी वैसा ही, इसलिए गोपियों के संग के प्रभाव से ऐसा हो सकता है। उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं जो गोपियों की महिमा कैसी है, उसी के लिए बतला रहे हैं। कोई मास्त्रियों बलचरी का विचार दुष्टा
कृष्णे कुचस परमात्मा निरूर भावा मुनिस्वरों भजतो अभिषु अभिसक्षा श्रेयस्तमो अवद्राजो की इसके विभिन्न प्रकार के टीकाकारों ने विभिन्न प्रकार से अर्थ पहले साधारण रूप में उनके भाव को बदला करते तब फिर हम लोग सनातन गोस्वामी के भाव पर हम लोग चले जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि सनातन गोस्वामी का भाव कैसा है लोगों से वैशिष्ट होते हैं। यहाँ पर इसके बाद में वल्लभाचार्य और लोगों के क्या भाव साधारण प्रकार के जितने भी टीकाकार हैं वो लोग अधिकांश रूप में भावार्थ की टीका को ग्रहण किया साधारण स्वामी जी के भाव को